संतप्त मानस शांत हूं, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान।
पिछली गाथा की गाथा के बिल्कुल अंत में एक बात कही थी कि पज्जे मूड़ा ही पर समया, जो द्रव्य को नहीं जानते हुए, द्रव्य गुण के स्वरूप को नहीं जानते हुए मात्र पर्यायों को ही जानते हैं और उनमें ही अपनापन करते हैं, वे जीव पर्याय मूढ़ हैं, वे पर समय हैं। पर समय माने मिथ्या दृष्टि, और स्व समय माने सम्यक दृष्टि। पर समय माने संसार मार्गी, स्व समय माने मोक्ष मार्गी। हम सभी जीवों को संसार मार्गी से मिटकर मोक्ष मार्गी बनना है। अब जो भी जहां खड़ा है, लेकिन सबका एकमात्र उद्देश्य मोक्ष मार्गी बनना है और संसार मार्ग से अपने को विरक्त करना है। इतना मोटा मोटा आइडिया सबका है। समय सार में तो दूसरी ही गाथा में उनने ये बात शुरू कर दी थी, मंगलाचरण किया और उनने कह दिया स्व समय किसे कहते हैं और पर समय किसे कहते हैं। समय नहीं समझाया, समय माने आत्मा। आत्मा क्या है ये समझाने के लिए समय सार लिखा और बस शुरू से ही ये कह दिया कि भाई जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है और ज्ञान दर्शन चारित्र में जो स्थित है वो स्व समय है। तो दूसरी गाथा माने पहली गाथा हुई ना, पहली गाथा तो मंगलाचरण में गई, प्रवचन सार में दूसरी गाथा नहीं तो दूसरे महाधिकार में उसका नंबर आया, लेकिन दूसरे महाधिकार में दूसरी गाथा, उसमें स्व समय और पर समय बताया है। पंचाशिकाय में स्व समय और पर समय की व्याख्या की है। स्व समय और पर समय की व्याख्या में तीन चीजें मुख्य हैं। एक अपेक्षा तो सारे मिथ्या दृष्टि माने चौथे गुणस्थान के पहले तक के सब जीव, मतलब पहले ही गुणस्थान वाले वो सब हैं पर समय, और सम्यक दृष्टि से लेकर मोक्ष तक के जीव हैं स्व समय। दूसरी अपेक्षा है सातवें गुणस्थान से ऊपर वाले सिद्ध तक हैं स्व समय और उसके नीचे वाले हैं पर समय। और तीसरी अपेक्षा है कि अरहंत सिद्ध भगवान है स्व समय और बारहवें गुणस्थान तक ये हैं सब पर समय। अब इन तीनों अपेक्षाओं को बहुत अच्छी तरह से हमें समझना चाहिए। इसमें चार पेज में एक कोटेशन दिया है समय सार का, में जो समय समय स्व समय पर बताया है तो वो भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन मोटे मोटे आइडिया मैंने बता दिया। स्व समय माने सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी और पर समय माने मिथ्या दृष्टि। ये मोटी मोटी बात है, ये समझने से फिर जो हम क्या समझा रहे वो बात समझ में आएगी। ये आचार्य अमृतचंद की टीका है, पहले गाथा तो पढ़ लें। बोलो गाथा पढ़ो।
आदि सहादम मिठेदा ते सब समया मुड़े दवा पर आय में दिय पर समय आत्म स्वभाव तित जीव ही है स्व समय है ताजिन वर देव।
जो पज्ज येसु निर्दाह जो पर्यायों में लीन हैं ऐसे जीव पर समय गे इति निर्दिष्ठा वे पर समय हैं ऐसा कहा। ये ना टी लिखा ना टी इति लगा लो निकालो इति के लिए है। ऐसा जो कहें वे पर समय हैं और आत्मा के स्वभाव में जो स्थित हैं वे जीव स्व समय मुड़े दब्या
उन्हें स्वसमय जानना चाहिए। सीधा सच्चा बसारा है पर्यायों में निरत जीव पर समय, तो आत्म स्वभाव में स्थित जीव स्वसमय। इनकी जो अमृतचंदाचार्य की दो पैरा का जो टीका के दो पैरे हैं, ये दोनों अत्यंत मार्मिक हैं और इसमें ऐसा लगता है कि उनका हृदय बहुत अधिक आंदोलित है। जिस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, ऐसा लगता है जैसे कि ऐसा लगता है कि लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, सुनते ही नहीं है, क्या बात है। देखो सबसे पहली पंक्ति है कि जो सकल अवद्याओं का मूल है ना, सकल अवद्याओं का मूल है। और नीचे की जो दूसरे पैरे की पंक्ति है कि जो सकल विद्याओं की मूल, मान दुनिया में जितना अज्ञान है, सकल अविद्या, अविद्या माने अज्ञान, उसका मूल क्या है और सकल विद्याओं का मूल क्या है, बस एक चीज बता रहे हैं। दोनों का मूल, दोनों का मूल बता रहे, एक बहुत साधारण बात थोड़ी हुई। इसमें कई तरह के सब लोगों को, विद्वानों को, पंडितों को, साधारण जनता को, सबको बहुत समझने की चीज है। अपने खासकर मुमुक्षु लोग जो विद्वान हैं, अपने विद्यार्थियों को छोड़ दो तो वे सब बस केवल ज्ञान से भिन्न आत्मा और पर्याय पज्जय मूढ़ा परसमया, इन गाथाओं के प्रवचन तुम लगभग सभी विद्वानों के एक दरस सुनना, कैसे तो उपलब्ध हो जाएंगे। तो सब केवल ज्ञान पर्याय है और केवल ज्ञान में अपना वो मूल है, वहां से शुरू करते हैं। यानी मनुष्य देव नाग की ये भी पर्याय हैं। ये कहने में तो उनको ऐसा लगता है कि मैं छोटा पंडित हो जाऊंगा, मेरा अपमान हो जाएगा। और केवल ज्ञान माने जिन्हें जो बिल्कुल एक तरह से काल्पनिक है, ऐसा जगत में लाखों में से एक जीव भी नहीं मिलेगा कि जो ये कहे कि मैं केवल ज्ञान रूप हूं, मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसा तो कहेंगे कि मैं मात्र ज्ञान स्वरूप हूं, केवल माने मात्र ज्ञान स्वरूप हूं, लेकिन केवल ज्ञान स्वरूप हूं, है ना, ऐसा कोई ऐसा नहीं कहता है। अब उसमें छात्रों के हम जन्म मान रहे, एक भी आदमी जिसमें ये नहीं करता है। जबकि अमृतचंद्राचार्य और कुंदकुंदाचारी जैसे महान आचारी अध्यात्म के, वो लिखते हैं सकल अविद्याओं का मूल। अब इस बात को इस गहराई से समझना कि जितना अज्ञान आज तक हमको है, किसी को भी है, उसकी जड़ क्या है। ठीक है, सकल अविद्याओं का मूल ये संस्कृत में पढ़ा है। देखो देखो संस्कृत की जो पंक्ति है ना पहली, उसमें थोड़े आधा आधा लेन पार कर दो, सकल अविद्यानाम एक मूलम उपगता है ना। फिर दूसरी पंक्ति पढ़ो ये पैरा चेंज करके, कि उसमें लिखा सकल विद्याओं का मूल, इसमें सकल अविद्याओं का मूल, ऐसा मूल संस्कृत पंक्ति में ये बात है। वो क्या है सकल अविद्याओं का मूल, तो वो लिखते हैं जीव पुद्गलात्मक असमान जातीय द्रव्य पर्यायों का आश्रय करते हुए यथोक्त आत्म स्वभाव की संभावना में नपुंसक होने से असमान जाति द्रव्य पर्याय में ही बल धारण करते हैं। ये जो है कहते हैं मनुष्य पर्याय है ना, जीव और पुद्गल की मिली हुई द्रव्य पर्याय, असमान जाति द्रव्य पर्याय माने मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, नारकी पर्याय। देव सोचें तो भैया देव की सोचें, नारकी सोचें तो नारकी की सोचें, क्योंकि अपन मनुष्य हैं तो मनुष्य पर्याय शब्द का प्रयोग अपन ज्यादा कहते हैं कि ये मैं मनुष्य हूं, ये सकल अवद्याओं का मूल है। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, माने ये जो मनुष्य के संबंधी जितनी भी चीजें हैं उनमें जो हमारा अपनापन, ये सकल अविद्याओं का मूल है। इसलिए हमारे सब आचार्यों ने जब भी बात की है आत्मा की, तो देह से भिन्न भगवान आत्मा, देह देवल में विराजमान पर देह से भिन्न भगवान आत्मा, मैंने भेद विज्ञान की बात करते हैं तो स्त्री पुत्रादि को जब इस भाषा में निपटा देते हैं कि जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई, जब शरीर ही अपना नहीं है तो फिर और लोग तो अपने कैसे होंगे, ऐसा कह के निपटा देते हैं ना। और वो जहां शब्द है वो जब के अर्थ में है क्या, अब जा का क्यों है कैसे है बस है, इतना समझ लो कि जहां का ऐसा मतलब थोड़ी कि जहां माने जयपुर में यदि देह अपनी नहीं है तो जयपुर में या और भी अपने नहीं हो सकते, जहां का मतलब स्थानवाची नहीं है, मतलब कालवाची है, पर मतलब समझ में आया ना। अब क्यों है, अब क्यों है देखो पूरा अर्थ निकलता है जैसे जैसे है, कौन सी डिक्शनरी में लिखा है, ये डिक्शनरियों से नहीं मिलते हैं, कुछ चीजें अपने आप अपने दिमाग से भी निकालनी पड़ती हैं कि जहां देह अपनी नहीं, जब शरीर ही अपना नहीं है तो जब अर्थ में है वो जहां, तो कहते देखो सकल अवद्याओं की मूल जीव पुद्गलात्मक असमान जातीय द्रव्य पर्याय, ये सब सकल अवद्याओं की मूल कौन है, जीव पुद्गलात्मक असमान जातीय द्रव्य पर्याय, ये सकल अवद्याओं की मूल है। जब बाबू भाई सबसे पहले हिंदी प्रांत में आए थे ख्याल में ना, तो वह इसी इसी पर उनके व्याख्यान होते थे, मैंने ये गाथा नहीं बस ये मनुष्य पर्याय की वो बातें ये करके गए, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं देव नहीं हूं, छठ दादा की वो पंक्तियां हैं वो कहते, उसके पहले नहीं आए थे वो। सकल अविद्याओं का मूल क्या, जीव पुद्गलात्मक असमान जातीय द्रव्य पर्याय, अब इतना लंबा शब्द है ना, आप समझ लो मनुष्य पर्याय अपना ये शरीर है ना, का आश्रय करते हुए यथोक्त आत्म स्वभाव की संभावना में नपुंसक होने से, अब ये कितना कठोर शब्द का प्रयोग किया कि ऐसे जीव जो देह में अपनापन रखते हैं, देह के प्रति समर्पित हैं, वे आत्म स्वभाव की प्राप्ति, संभावना मन प्राप्ति, आत्म स्वरूप का की प्राप्ति उन्हें की संभावना भी नहीं है, है ना, संभावना माने तो आत्मा की प्राप्ति की संभावना नहीं है, ऐसे इस काम में वे नपुंसक हैं, नपुंसक मानते गाली हो गई ना एक आजकल, तो वास्तव में पुंसा माने पुंसा बोलते हैं ना पुंस, ये संतान उत्पन्न करने के अर्थ में है, और ना पुंसक माने जो संतान करने उत्पन्न करने के योग्य नहीं हो वे नपुंसक, वैसे लोक में और वैसे कोई भी काम में जो आदमी समर्थ नहीं है तो उसे कहते तो नपुंसक है, आप सुने ना, नपुंसक का मतलब बिल्कुल पुरुषार्थहीन, इसके बस की कुछ नहीं है। इस शब्द का प्रयोग मैंने बहुत पहले किया था तो लोगों ने कहा ये क्या 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 तुम्हें मालूम है कहां किया था, बोलो बोलो, बोल सकता कोई बोलो, उसका देवसाज गुरु पूजन का फूल का छंद क्या है, पुष्प का छंद है, पुंसत्व गमाया आया ना, माया ने डाला जाल प्रथम काम बताने मान लिया है ना, उसमें पुंसत्व गमाया डाला था, तो ये वो कहते पुंसत्व क्या हो, पुंसत्व क्या दुनिया को ये पुंसत्व समझाना, तब से सन 57 से पुंसत्व को साहब इसे बदल दो, इसे बदल दो, इसे बदल दो, जो हमें समझ में नहीं आता, पुंसत्व गंवाया माने पौरस को तुमने गंवा दिया, तुम नपुंसक तुम्हारे आ गया है, मैंने मैंने मुझे एक एक शब्द का कब 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 कैसा प्रयोग किया है उसका मुझे ख्याल है शांति जी, ये कब 14 वर्ष की उम्र में, 15 वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में कब कब किन शब्दों का कहां कहां क्या प्रयोग किया, किस अर्थ में, और वो क्यों उसका अर्थ में उस वक्त से ही उतना जानता हूं। ज्यादा ज्ञान बढ़ा नहीं है, क्या लिखा है देखो, आत्म स्वभाव की संभावना में नपुंसक होने से, माने मुझे आत्म स्वभाव की प्राप्ति हो, इसका नाम है पुत्र की उत्पत्ति। पुत्र की उत्पत्ति इस जगत में सबसे बढ़िया मानी जाती है, तो इसमें वो जीव नपुंसक है कौन, जो जीव मनुष्य पर्याय में अपनापन धारण करती है, अथवा असमान जाति द्रव्य पर्याय में अपनापन धारण करते हैं, है ना, असमान जाति द्रव्य पर्याय में ही बल धारण करते हैं, उनकी सारी शक्ति उसमें ही लगती है। मेरा स्वास्थ्य ठीक रखना है, मेरा जो भी मुझे करना है, है ना, एक एक चीज उसके हिसाब से, एक किलो वजन बढ़ जाए शरीर का तो मेरा वजन बढ़ गया, और एक किलो कम हो जाए तो मेरा कम हो गया। अब वो बढ़ने को अच्छा मानते हैं कि कम होने को अच्छा मानते हैं, वो उसके आधार पर फिर है सुख दुख होना, लेकिन हमारे सारे निर्णय बस उस देह के आधार पर ही होते हैं। देखो बल धारण करते हैं कैसे, बल धारण करना माने क्या, देखो मैं मनुष्य हूं, मेरी यह नर देह है, इस प्रकार के अहंकार के अहंकार और ममकार से ठगे गए हैं। देखो इस प्रकार के अहंकार, इस प्रकार के ममकार, किताब है आप लोगों के पास, देखो ये मैं हूं इसका नाम है अहंकार, और ये मेरे हैं इसका नाम है ममकार। दो उदाहरण दिए ना, मैं मनुष्य हूं इस अहंकार से, और मेरी यह नर देह है इस ममकार से। ये अहंकार ममकार क्या ना समझ में आया ना, एकत्व बुद्धि उसका नाम अहंकार, और ममत्व बुद्धि उसका नाम ममकार। अध्यात्म में ये मैं हूं और ये मेरा है, इन दोनों का एक अर्थ माना जाता है, तो ये दोनों ही मिथ्यात्व के सूचक हैं। कोई कहेगा नहीं नहीं मेरा ममकार तो छूट गया है और अहंकार रह गया है अकेला, अब मैं शरीर हूं ये तो मैं नहीं मानता, लेकिन मेरा शरीर है ये तो है, ये नहीं तो संभाल तो थोड़ी रखनी ही पड़ती है ना, जब अपना है तो वो समझता है अहंकार छूट गया ममकार रह गया, और अहंकार माने अकेला घमंड नहीं होता, है? क्या होता है अहंकार माने मिथ्यात्व, और अहंकार माने सम्यक्त भी होता है, क्या होता अहंकार माने मिथ्यात्व घमंड नहीं, अहंकार अपन बोलते वह अहंकारी है, मिथ्यात्व सम्यक्त। अरे अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा को छोड़कर पर में अहंकार ममकार करे तो मिथ्यात्व, और अपने आत्मा में अहंकार ममकार करे तो सम्यक्त। तो अहंकार ममकार कहां खराब हुए, वो तो किसने किया इसके आधार पर उनकी अच्छाई और बुराई का नक्की होता है। शायद मैंने एक आध दफे आपको बताया था कि ये पंजाबियों में भी दो मत होते हैं, जानते हैं, जैसे अपने दिगंबर सीतांबर है ना, एक अकाली और निरहंकारी, दो संप्रदाय हैं, एक अकाली दल इनका है ना, पंजाब में अकाली दल की सरकार बनी हुई है, और एक निरहंकारी। ये निरहंकारी जो हैं वे नीली पगड़ी बांधते हैं, देखिए वो कभी नीले कलर की जो पगड़ी, उनकी अलग कलर है उनका, और बाकी के लोग दूसरे कलरों की पगड़ियां बांधते हैं, उनका शायद एक कलर नक्की नहीं होगा, लेकिन वो नीली नहीं बांधते होंगे, क्योंकि अब निरहंकारियों से अलग अपने को बताना है। जैसे अपने आए ना, कोई ने मुंह पट्टी लगा ली, कोई ने ऐसी मुंह पट्टी लगा ली, कोई ने ऐसी लगा ली, जानते आप, जो सीतांबर है ना
स्थानक वासी हैं, जो 500 साल पहले वो हुए थे ना लोकासार, उनके अनुयायी हैं, वो लोग ऐसी पट्टी बांधते हैं। ऐसी का मतलब समझ में आया ना, कैसे बताऊं, ऐसी लगे कि यहां एक डोरा डाला रहता है, वही डोरा को कान में लगा देते हैं, ऐसी पट्टी ऊपर से ऐसी डाली रहती है, ऐसा कर लेते हैं, समझ में आया ना। ये कौन है? स्थानक वासी, वो जो तेरा पंथी है ना लारनू वाले विश्वविद्यालय वाले, ये इनकी पट्टी ऐसी होती है, एक डोरा यहां होता है और एक डोरा नीचे होता है, और दोनों को ऐसे बांध के ऐसे कान में डालते हैं। जानते थे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं जानते थे तो अब जान लो, और इससे तुम पहचान सकते हो कि जो तेरा पंथी है ये स्थानक वासी है। ज्यादातर स्थानक वासी बम्बई के आसपास उधर और ज्यादा हैं, दिल्ली के आसपास पंजाब में भी हैं, और ये ज्यादातर ये है ना जो तेरापंथी, ये मारवाड़ी ज्यादा है। ये राजस्थान में एक भिक्षु हुए थे, वो राजस्थान के थे, तो इनके भगत राजस्थानी ज्यादा हैं, और उधर गुजरात वगैरह में कम मिलते हैं। मुंबई जैसे मद्रास जैसे बड़े शहरों में तो अब सब जगह के सब लोग व्यापारी समाज है ना, तो पहुंच ही गए तो सब मिल जाते हैं, लेकिन एरिया उनका सबसे ज्यादा उधर है। ऐसे उनके अहंकारी निरहंकारी, तो अहंकार शब्द आया ना, वो भी कहते हैं कि हम निरहंकारी हैं, हम अहंकार नहीं करते। अपने अहंकार तो बहुत खोटी चीज है, मैंने अपने घमंड को अहंकार समझते हैं। अभी निरहंकारी क्या कि हम अहंकार नहीं करते हैं, ऐसे एक ऐसा संप्रदाय। और वो अकाली जो कहते हैं कि धर्म पर काल का असर नहीं पड़ता, समझ रहे ना। अब जो बहुत से लोग कहते चरणानी योग में तो फिर परिवर्तन करना चाहिए, बहुत भले हो गया लोग। अभी मुझसे कहीं 10-15 दिन पहले एक किसी अपने बहुत नजदीकी आदमी ने मेरे से आग्रह किया कि नहीं दादा परिवर्तन थोड़ा होना चाहिए। मैं नाम भूल गया सचमुच कि किसने कहा था, कैसी बात करे, सर्वज भगवान की कही हुई बात है, आलू में अनंत जीव है, क्या करूं मैं उसके लिए, क्या बदल दूंगा है? तो कहते नहीं साहब थोड़ा छने पानी के मामले में है, थोड़ा ऐसा है, थोड़ा इस मामले में है, इन मामले में थोड़ा रात्रि भोजन के मामले में है, इतना उजीला हो गया है, पहले जमाने में उजीला नहीं था, थोड़ा बहुत जो नाम मात्र का बचा है उन्हें वो भी खत्म करना है जैन धर्म क्या तो क्या कहते हैं निरहंकारी और अकाली। अब अकाल का मतलब समझे ना, अपन लोग कहते काल का असर पड़ता है, आज चौथे काल का मुनि धर्म अलग था और पांचवें काल का अलग था, वो जंगल में रहने की बात है, चौथे काल की है, इसे कहते ना। तो उनसे जो लोग कहते हैं कि काल से बदलता नहीं, चौथे काल का और पंचम काल का स्वरूप तो एक ही होगा, चौथे काल का सम्य दर्शन अलग टाइप का होगा और पंचम काल का सम्य दर्शन अलग टाइप का होगा, ऐसा नहीं है। अपन क्या मानते हैं, जैसे ही मानते हैं ना, तो अपन अकाली हैं, समझे ना। अपने ये काल के मामले में बहुत गर्व है, ये पर्याय वो है, काल है वस्तु में, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव का एक काल पक्ष है ना, तो उसके बिना तो द्रव्य ही नहीं रहेगा आत्मा। जो पर्याय पक्ष है वो अलग अलग पना, जो पर्याय पना है उसका अलग अलग पना उस वो नहीं है, और जो पर्यायों की जो कंटिन्यूटी है जिसका लक्षण नित्यता है वो है, ऐसा मानते ना। तो ये वो काल का अकाली का मतलब ये कि काल का प्रभाव नहीं होता, और निरहंकारी का मतलब ये कि हम पर पदार्थ में अहंकार नहीं करते, हम तो अपने आत्मा में ही अहंकार करते, तो वो अपन तो अपन निरहंकारी भी हैं और अकाली भी हैं। क्यों देखो, मैं मनुष्य हूं ये क्या है, अहंकार, और मैं मेरी ये निर्देह है, मैं शरीर हूं, शरीर को शरीर मेरा है, ये क्या है? अहंकार। यानी ये अहंकार और ममकार हैं और ये मिथ्यात्व की निशानी है। इस प्रकार के अहंकार ममकार से ठगे गए हैं। देखो कहीं 1,000-2,000 रुपये किसी ने अपन से ठग लिए, 1 रुपये की चीज के 2 रुपये ले लिए, वो काहे की ठगाई है? वास्तव में बनारसी दासी भाषा में बात करेंगे तो वो कहेंगे क्या किया उसने, मेरी इतना परिग्रह कम कर दिया मुफ्त में। समझ रहे ना, 1 रुपये के 2 रुपये ले लिए ना, तो 1 रुपया मेरा परिग्रह कम हो गया ना। एक जगह उन्होंने लिखा है कि ऐसा ऐसा हुआ तो उतना परिग्रह कम हो गया। उनकी आत्मकथा में एक पंक्ति है कि जब उनका सारी संपत्ति लुट गई, सब जीरो जीरो पे, एक दो दफे नहीं, उनने जिंदगी में व्यापार किया, धंधा पानी किया, कोई बड़ा करोड़पति अरबपति वाला नहीं, ये छोटा छोटा वाला, क्या कहीं भूंगड़े बेचना, कहीं सब्जी बेचना, कहीं रत्न भी थे उसमें, यहां वहां से 10-5 रत्न खरीद लाए, फिर आगरा में बेच दिए, आगरा से बनारस ले गए वहां बेच दिए, वो ये तुमको रत्न और सब्जी एक साथ परमात्मा तो मालूम, बनारसी दास का क्या क्या था, वो जौनपुर के थे, जौनपुर जानते हो, यूपी का एक गांव है, जिला जौनपुर, तो वहां से सब माल लेके बैलों पर लाद लूद करके, जिसमें आटा दाल भी होता था, अनाज भी होता था, उस एरिया में पैदा होने वाली जो चीजें वो भी होती थी, साथ में थोड़े हीरा जवाहरात भी होते थे, सोने चांदी के भी गहने भी होते थे, ये सब चीजें ले लवा करके आगरा आते थे और आगरा के मार्केट में वो चीजें बेचते थे। क्या? और वो बेचने के लिए ऐसा नहीं कि एक दुकान मंडी लगी है और फटाफट बोली बोली झपट बिक गया, वो उन्हें बेचने में घर घर जाके बेचने से महीनों लगते थे, फिर बाजार में कहीं बैठ जाते होंगे ऐसे, समझे ना। वैसे तो गोदगा जी ने कहा था इधर है कि हम बनारस जाते थे और ऐसे जैसे जी बैठे रहते हैं ना अपने सड़क के किनारे, वो मुझे कबूतर लिए और तुम्हारा भविष्य बताते रहते हैं, और वो ऐसे वहां बैठे रहते थे, धंधे करने वाले हीरे का, झवेरी का धंधा करने वाले, ऐसे बेचते ऐसे खरीदते थे। बम्बई का एक बाजार था धनजी स्थित, उसमें ऐसा होता था, तो ऐसा काम करते थे वो, कई दफे लुटे भी थे, सब साफ हो गया है? तो उनसे पूछा भाई क्या हुआ, कि जितना परिग्रह गया उतनी शांति हो गई, परिग्रह की उपशांति। अब सब जानते हैं जो आकुलता हुई होगी, तकलीफ हुई होगी, आप समझ गए ना, वो तो उनने भोगी ही होगी और उसका उपचार भी किया ही होगा, आगे धंधा पानी करने के लिए जो भी किया होगा। तो वे कई दफे लुटे थे, एक दो दफे नहीं, क्योंकि वहां से यहां आते थे, रास्ते पे बैल मैल के साथ में आते थे, जंगल के पास होते थे, जंगल में लुटे थे, रहते थे, लूट लेते थे बस। इससे उनके माथे पर इतना प्रभाव पड़ा था कि जब अकबर मरा तो वे एकदम गिर के बेहोश हो गए थे और माथा फूट गया था उनका, बहुत खून निकला। कब? अकबर मरा जब, ये समाचार सुनते किसी ने कहा अकबर मर गया, है ऐसा कहा, गिर गए, एकदम माथा फूट गया। ये उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा। तो ये ऐसा क्या था, अकबर से क्या लेना देना था, अकबर तो मुसलमान राजा था, क्यों और उसने क्या किया कि जिसके लिए अपने बनारसी दास जैसा धर्मात्मा आदमी क्यों इतना बड़ा धक्का लगे, अकबर के मरने का इतना धक्का लगे, ये समझ के बाहर की बात है। कोई उपीता मपीटा लग गया होगा, उपीटा समझते पैर टकरा जाता है ना किसी पत्थर मत्थर से और गिर जाते हैं, कि नहीं उस समय कोई राजा सिर्फ इतनी बात होती थी कि उसके राज्य में लूटपाट नहीं होती थी, और लॉ एंड ऑर्डर ये बिल्कुल ठीक चलता था, तो बस इतना ही पर्याप्त है राजा के लोकप्रिय होने के लिए। वो जनता के लिए कुछ करे, तालाब बनवाए, खेती बनवाए, सड़कें बनवाए, कोई जरूरत नहीं थी। मान लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब रहता था, हर गांव गांव में लूटपाट मची रहती थी। इस गांव से दूसरे गांव जाए, जैसे यहां से बहनें निकलती हैं ना, उनके छीन लेते हैं केले का, क्या जंजीर मंजीर ऐसे छीन लेते थे। यहां से जयपुर जाए, जयपुर 10 किलोमीटर है, 10 रास्ते में ही लूट लेते थे। तो इतनी अराजकता रहती थी, और जिस राजा के राज में वो शांति रहती थी, वही राजा लोग आपस में लड़ते रहते थे। ये राजा के सब डाकू ही थे, ये खुद ही लुटेरे थे, ये खुद ही लूटते थे। तो वो जिसके राज में एक कम होता था, वो थोड़ी शांति चलती थी, उस राजा के प्रति सब लोग भगवान जैसा मान लेते थे, उसे समर्पित हो जाते थे। सारी जनता अत्यंत लोकप्रिय हो जाता था। वो एक कुआं बनवा दिया उनने एक गांव में, क्या तो बस उस जैसा महान दुनिया में कोई नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई दूसरा है। तो राजा साहब की आज्ञा हो गई कि उनके राज्य में, इतना बड़ा हिंदुस्तान का राज्य, हर जिले में एक कुआं बनवा दिया जाए। और इसका इतना प्रचार होता था, गांव गांव में हर जिले में कुआं। अरे वाह, गजब है। क्योंकि लोगों को 2-2 किलोमीटर दूर पानी भरने जाना पड़ता था, कुएं तक नहीं थे। जनता अपने आप खोद के बना नहीं सकती थी, क्योंकि इतने साधन नहीं थे उनके पास। तो वो अकबर मरा है तो लोक में अराजकता होगी, झगड़ा होगा, और गांव गांव में लूट। जब वो वहां केंद्र कमजोर होता था, तो सब ये जो राजे छोटे छोटे होते थे, वे सब स्वतंत्र हो जाते थे, और वे सब लूटे रहे थे, वे डाकू ही थे, वे लूटपाट शुरू कर देते थे। और लूटपाट शुरू हो जाती थी गांव गांव में, एक एक दफे, 10-10 दफे, सारी जिंदगी में 10-10 गांव छोड़ के दूसरे गांव में भागना पड़ता था। ऐसा नहीं कि अपन को तरक्की मिल गई, अच्छी नौकरी मिल गई, तो अपन इस गांव को छोड़ के उस गांव में चले गए, ऐसा नहीं। मार मार के भगा देते थे। देखो कितने गुजराती महाराष्ट्र में पहुंच गए, कोई आराम से नहीं गए, पिटाई हुई है जब गए। अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या कहूं कि नेमिनाथ भगवान के कुल वाले, ख्याल में ना, वो सबके सबको मथुरा से भाग कर समुद्र के किनारे तक भाग के जाना पड़ा था। वो तो नेमिनाथ का जन्म होने वाला था, इसलिए वो इंद्र ने वहां नगरी बना दी द्वारका, तो उन्हें रहने की व्यवस्था हो गई, नहीं तो जंगल में जाकर के कैसे रहना पड़ता। क्यों, ये बिल्कुल पक्की बात है ना, शास्त्र में लिखी हुई, जैन दिगम जैन अजैन सब में, कितनी कितनी दूर है, मानो 1000 किलोमीटर से ज्यादा होगा। मान मथुरा से जाएंगे तो मानो कहां आएंगे, इधर ही जयपुर आएंगे, फिर अजमेर जाएंगे, फिर इधर से जाते जाते इधर कहां कहां से जाएंगे, ऐसे होते होते अहमदाबाद पहुंचेंगे, फिर अहमदाबाद से भावनगर, उधर समुद्र के किनारे वहां पहुंचेंगे, फिर द्वारका के किनारे, फिर अंदर समुद्र के अंदर, वहां समुद्र पर भी खड़े खड़े नहीं रहने दिया, किसी ने पिटाई करी तो समुद्र में कूद गए, तैर के जैसे भी गए तो जाके पहुंच गए, कोई टापू मिल गया, उस टापू पर रह गए। अब उस टापू पर जो भी पेड़ पौधे होंगे, खेती मेती कर करा करके अपनी आजीविका की, उस हिंदुस्तान से निकल के हिंदुस्तान की जमीन पर नहीं आ सकते थे, यही पोजीशन थी है? और जिस कुल में नेमिनाथ को पैदा होना था है? श्री कृष्ण नारायण पैदा हुए थे, सब जानते हैं ना, मथुरा में पैदा हुए थे, और वहां द्वारका जाकर खार को पहुंच गए द्वारका, क्योंकि बीच बीच हिंदुस्तान में थे ना, एकदम बढ़िया। हाँ, अपनी क्या बात चल रही है, नहीं मैं कुछ मतलब से है, कोई है। मैं मनुष्य हूं और ये मेरी निर्देह है, ये दोनों ये एकत्व मत है,
ये अज्ञान है
कि क्या करना है कि तुम जो मैं मनुष्य हूं मेरा शरीर है इसका ये अज्ञान है तुम्हें बस। और धर्म करने के लिए क्या करना है बोलो कि ये मैं नहीं हूं और ये शरीर मेरा नहीं है ये करना करना ये सकल विद्याओं का मूल है। अरे बारे वाह सकल सारा धर्म इसमें होता है और सारा अधर्म उसमें होता है बोलो मानने को तैयार हो नहीं हम नहीं माने हमें तो धर्म करने के लिए 10-20 उपवास बताओ दो चार डंडा मारो खाने पीने तो हम माने। अरे ये धर्म तो मान्यता का नाम है ना हम जैनी हैं तो मान्यता की वजह से है ना कोई मान्यता की वजह से है ना तो मान्यता में ही होगा ना जो कुछ होगा और क्या होगा भाई ये होना है कि जो मैं हूं उसमें मैं हूं ऐसा माने और जो मैं नहीं हूं उसमें मैं हूं ऐसा नहीं माने तो शरीर मैं नहीं हूं उसमें उसको मैं हूं माने बस उसका नाम अधर्म और शरीर में नहीं हूं ये माने कि शरीर में नहीं हूं मैं तो आत्मा हूं इसका नाम धर्म। सीधे सच्ची तो बात है इतनी सरल बात किसी की समझ में नहीं आती देखो पढ़ रहे ना अहंकार ममकार से ठगे गए हैं कहा है ना शरीर में ये जो हमने ऐसा माना ये हम ठगे गए हैं जिसने हमको जो कोई हमसे निमित्त बना ऐसे मनमाने में वो उसने हमें ठग लिया है। निर्गल एकांत दृष्टि वाले हैं वे लोग निर्गल बिल्कुल एकांत और कोई एकांत वेकांत नहीं है यही एकांत है वे लोग उन क्या क्या हालत है उनकी अभी चले तो चेतना विलास मात्र आत्मव्यवहार से चित होकर आत्मव्यवहार मैंने भी ऐसा माने कि मैं आत्मा हूं ज्ञानानंद स्वभावी तो उनका व्यवहार ऐसा होगा ना जो आत्मा में अपनेपन का तो जब आत्मा की बात आएगी तो वे मैं बोलेंगे ना क्यों तो वो आत्मव्यवहार तो उन्हें दिखना नहीं जाता आता है देह में अपनापन है तो देह का व्यवहार चलता है मैंने वो अंदर में जैसा मानेंगे वैसे ही तो व्यवहार होगा। अब देखो मैं बताता हूं थोड़ा नो आज मेरी आत्मा में बहुत अशांति है तो मेरे से बात मत करो क्या क्या कहा तुझे अशांति है कि तेरे आत्मा में कौन है तेरा आत्मा मां है कि पत्नी है कि बेटी है कौन है बोला मेरी आत्मा अरे मेरी आत्मा नहीं मुझ में अशांति है मैं अशांत हूं ऐसी भाषा इसका नाम आत्मव्यवहार मैंने आत्मा को निज मान कर जो तेरी भाषा निकले वो आत्मव्यवहार और देह को निज मान कर जो तेरी भाषा निकले वो देह का व्यवहार ऐसे ठीक है ना आत्मव्यवहार का मतलब समझ गए ना कि आत्मा का और व्यवहार होता होगा उसमें 3 उपवास किए जाते होंगे देह के उपवास में 2 ही किए जाते हैं क्यों ऐसा कुछ होगा ना हमारे आचार्य ने सब नक्के कर दिया रत्नत्रय के 3 उपवास धर्म के 10 लक्षणों के 10 उपवास और 16 ग्रह भावनाओं के 16 अरे 16 नहीं 30 क्या कहें किसको कहें जो बंद की कारण है 16 कारण भावना है तो उसके 16 ही रखते 16 नंबर होने से लेकिन उसके 30 पूरा भादों का महीना उसके चलेंगे रत्नत्रय 3 दिन चलेगा धर्म के 10 लक्षण 10 दिन चलेंगे बोलो वो जो 16 कारण भावनाएं हैं उससे लाख गुना अच्छा है धर्म के 10 धर्म और अनंत गुना अच्छा है रत्नत्र ठीक है हमने क्या कीमत करी कि साहब हमने जो उपवास से कीमत कैसे नहीं है परसों ही मेरे पास एक कनाडा के भाई आए थे तो कहते मैं तो शेखर जी गया था अच्छा
तो ठीक रहा ना सब बढ़िया? क्या ठीक रहा? मैं तो बहुत परेशान हो गया। क्या परेशानी हुई कि जिस टोंक पे जाए इसमें इतना कूड़ा करोड़ी मुनि उपवासों का फल, इतने करोड़ मुनि मोक्ष गए वो तो ठीक ठाक, लेकिन इतने उपवास करो उसका फल मिलेगा। एक टोंक का 1 लाख और एक का 1,50,00,000, उन दोनों में क्या फर्क है? क्यों चंद्र प्रभु का 1.5 करोड़ और कुंदनाथ का 1 ही लाख? कुंदनाथ में अभी क्या कमी है चंद्र प्रभु से? कोई भी हो गई देखना फर्क है क्या नहीं? दो टोंकों में फर्क है जो आप वहां पढ़ते हो, किताबें वहां मिल जाती हैं सबको, वो किताबें ले लेके पढ़ते हैं। वो सचमुच बहुत परेशान हो गया था, उसने मेरे से आगे बहुत समझाया और मैं मुझे आप समझाओ मैं क्या समझाता उसे क्या वो मानने को तैयार नहीं था कई बात से। देखो यहां से कितना क्लियर, देखो निरर्गल एकांती दृष्टि वाले लोग अविचलित चेतना विलास मात्र आत्म व्यवहार। देखो मैं एक एक का अर्थ कर रहा हूं, एक एक शब्द का। आत्म व्यवहार किसे कहते हैं वो सब बताया। चित्त होकर, अब सुनो, समस्त क्रियाकलाप से को छाती से लगाने रूप मनुष्य व्यवहार। समस्त क्रियाकलाप को छाती से लगाना, ये समस्त क्रियाकलाप क्या है बोलो केला जी? बताऊंगा तो फिर झगड़ा खड़ा होगा। सुबह से उठते हो ना, ये मंजन करना, नहाना धोना, फिर भगवान की पूजा करना, फिर यहां से वहां डालना, फिर करना, फिर जो भी समझ लो आप, फिर तो उपवास करना, ये सब क्या है? क्रियाकलाप है। और इसे इस अज्ञानी ने क्या किया है? छाती से लगाया है। देखो शब्द तो देखो, भाषा देखो, लिखा क्या लिखा देखो। मेरा तो ऐसा मन ही नहीं, आगे बढ़ता ही नहीं है, मैं क्या करूं, मैं बढ़ नहीं सकता हूं। चेत समस्त क्रियाकलाप को छाती से लगाने रूप मनुष्य व्यवहार, ये मनुष्य व्यवहार का अर्थ बता रहे हैं वो, कि जब तुम सुबह से शाम तक धर्म के नाम पर क्रियाकांड करते हो ये मनुष्य व्यवहार है, तुमने आत्म व्यवहार छोड़ दिया है और मनुष्य व्यवहार में उलझ गए हो। का आश्रय करके मनुष्य लिखा ना, रागी देशी होते हुए परद्रव्य रूप कर्म के साथ युक्त हो जाने से, पर के साथ हो गए ना लीन, इसलिए पर समय है, पर समय रूप परिणमित होते हैं। ये पर समय की व्याख्या उन्हें बताइए बोलो क्या करें? सुबह से दातुन नहीं करें, मंजन नहीं करें, नहाए नहीं, धोए नहीं, पूजा नहीं करें, भगवान के दर्शन नहीं करें, क्या नहीं करें? तो फिर ये मनुष्य व्यवहार नहीं है कि करो भी और ये मनुष्य व्यवहार भी है। तुम तो कह रहे छाती से लगाया है, लिखा है ना, मैंने तो बता रहे, लेकिन सिर्फ ये मत मानो कि ये मैं हूं, ये मेरा धर्म है। देह की क्रिया से देह का धर्म होता है, आत्मा का धर्म नहीं होता है। कहने नहीं, प्रत्येक बाप की ड्यूटी है कि अपने संतान को पाले पोषे पढ़ाए लिखाए। किसकी ड्यूटी है? प्रत्येक आत्मा की के बाप की, तो ये बाप का धर्म है ना, ये मां का धर्म, ये बाप का धर्म, ये पत्नी का धर्म, ये पति का धर्म, यही धर्म है। बहुत बहुत जगह जगह लगा करके मैंने बहुत पहले करीब 12-13 वर्ष की उम्र में एक लेख लिखा था, तो उसमें लिखा था कर्तव्य परायणता का ही दूसरा नाम धर्म है। क्या था हेडिंग? क्या था भाई? कि माँ अपने माता के प्रति, पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, फलाने के प्रति क्या कर्तव्य है, जो भी है तो उस कर्तव्य को मानना और ईमानदारी से निभाना, असली धर्म तो यही है। बताया था, मानता भी ऐसा ही था।
है क्या?
तो ये कर्तव्य निष्ठता तो शब्द अच्छा है, लेकिन किसका कर्तव्य? कर्तव्य माने करने योग्य कार्य, हो गया ना, कर्तव्य माने यही होता है ना। तो देह के, तो मैं मनुष्य हूं तो मनुष्य के करने योग्य कार्य है, लेकिन मैं आत्मा हूं तो आत्मा के करने योग्य कार्य तो नहीं है ये। तो ये मनुष्य धर्म हुआ, आत्मधर्म तो नहीं हुआ ना। ये पत्नी का धर्म हुआ, पति का धर्म हुआ, मां का धर्म हुआ, बेटे का धर्म हुआ, आत्मा का धर्म नहीं हुआ। बस तुम पति पत्नी मां बाप बेटे बेटे यही हो, बस इसके अलावा कुछ नहीं हो। क्यों? तो यही सारे धर्म निभाते रहना जिंदगी भर। भारत का नाम नागरिक हूं इसलिए मेरा धर्म है कि भारत की सेवा करूं, फिर मैं राजस्थानी हूं तो मेरा धर्म है कि मैं राजस्थान की सेवा करूं, क्यों? फिर मैं जयपुरिया हूं इसलिए मेरा धर्म है कि मैं जयपुर की सेवा करूं। कितने धर्म हैं तेरे? तुमने दो इन सारे को दो भागों में बांटा, एक आत्मव्यवहार और एक मनुष्य व्यवहार। तुम मनुष्य होने की वजह से जो जो कर्तव्य तेरे माथे पे मर दिए गए हैं, कि मर गए हैं, ये कहां से नक्की हुए थे? एक बच्चा अपने घर में पैदा हुआ तो उसके कितने कितने ये धर्म हैं, ये कहां से पैदा हुए, कौन बताएगा, क्या करेगा? अब तुम सिखाओगे फिर एक एक करके, कि ये बेटा तेरी माँ है, ये पिता है, ये भाई है, ये नाना है, ये दादा है, इसके प्रति ये है, इसके पैर छुए जाते हैं, बेचारे को गुलामी सिखाओगे, बस इसके पैर उसके पैर। ये राजस्थान में आगे और क्या होने वाला, मैं तो किसी के नहीं पढ़ता था, मेरे माँ बाप के कोई मेरे से किसी के पैर पड़वा नहीं सकते थे, मैंने ज्यादा नहीं पढ़िया कि पढ़े किसी के, माँ बाप के भी ज्यादा नहीं पढ़े, भाई बहन के भी नहीं पढ़े, थोड़े बहुत पढ़े होंगे तो अभी बुढ़ापे में पढ़े होंगे। मैंने बचपन में किसी के पैर नहीं पढ़े, आप सोच नहीं सकते हो कैसा आदमी हूं, कैसा माना जाता हूंगा। गुलामी सिखाए कि गुलामी, पैदा होते ही गुलामी सिखा रहे, कितने देवता यहां से वहां तक, इनका अंत ही नहीं आता है। वो शादी होके आए तो दरवाजे के पैर पड़ो, एक एक चबूतरी है इसके पैर पड़ो, फिर उधर पैर पड़ो, फिर उधर पैर पड़ो, फिर हमारा एक गांव है तो तीन पीढ़ी के पहले हमारे बाप दादे वहां रहते थे, वहां कोई मकान है, वहां चलो, वहां आते लगा, कितना मां पागलपन है, क्या हो गया हमने, ऐसा क्या कर गए, इतने ये सब इतने हार लगा के लगाते हैं ना, तो ये निशान बनवाते हैं कि तुम भग जाओगे तो हम पहचानेंगे कैसे, इसलिए पकड़ने के लिए काहे कोई हाथ में जा रहा है, हमें किसी को कुछ, हमें क्या लेना देना, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, काहे का गांव, कैसा गांव, हम बरसों छोड़े वहां से हो गए, अब काहे का, हमारा जो है हमें उसे ही छोड़ना है, जयपुर भी हमारा नहीं जिसमें रहते हैं 50 साल से है? अब उसने तीन पीढ़ी के पहले हमारे बाप दादे रहते थे, वो हमारा काहे का, क्यों? देखो लिखा है सब, इनका अर्थ मेरी समझ में आता है, अंदर अंदर घुलता रहता है, फिर मैं पढ़ता रहता हूं बार बार और मन ही मन खुश होता रहता हूं। मैं देखो तुम लोग कोई देखेगा ना सामने तो क्या काय को मुस्कुरा रहे, क्यों हंस रहे, कोई तो है नहीं कोई तो है नहीं, क्या क्या कर रहे हैं ये, इसमें ऐसा क्या रखा तो मैं सार में कि जिसके लिए हंसे, नहीं कुछ ऐसा नहीं है। ये पैरा जो अपन ने पढ़ा है शांति से एक तरह पढ़ के सुनाना भैया, जरा थोड़े मेरे गले में आराम मिलेगा, सुनाओ अच्छी तरह, जिसकी आवाज बढ़िया हो है तो पूरा सुनना, पूरा पैरा हिंदी का पढ़ो।
जो सकल अविद्याओं की मूल जीव पुद्गलात्मक असमान जातीय द्रव्य पर्यायों का आश्रय करते हुए यथोक्त आत्म स्वभाव की संभावना में नपुंसक होने से असमान जातीय द्रव्य पर्याय में ही बल धारण करते हैं, मैं मनुष्य हूँ, मैं यह नरदेह हूँ, इस मेरी यह नरदेह है, इस प्रकार के अहंकार ममकार से ठगे गए हैं निरर्गल एकांत दृष्टि वाले वे लोग, अविचलित चेतना विलास मात्र आत्म व्यवहार से चित होकर समस्त क्रियाकलाप को छाती से लगाने रूप मनुष्य व्यवहार का आश्रय करके रागी द्वेषी होते हुए पर द्रव्य रूप कर्म के साथ युक्त हो जाने से पर समय होते हैं, पर समय रूप परिणमित होते हैं।
जो तुमने इतनी मैंने व्याख्यान किया, देखा ना, एक एक शब्द का अर्थ किया है मैंने, इसमें से जो पढ़ी है पंक्तियां वो एक एक शब्द का अर्थ किया है, वो एक एक शब्द का विचित्र बड़ा अर्थ है कि समृद्ध सकल अविद्याओं का मूल है ये मनुष्य व्यवहार। अब जिसको तुमने अपने सब कितने कर्तव्यों में बांध रखा है वो क्या है तुम देखो तो, और आत्म व्यवहार को उसके बदले में भूल गए। अब इसके नीचे सकल विद्याओं का मूल, देखो ये भी वाक्य बिल्कुल उससे उल्टा है, जब मैं ही पढ़ता हूं शांति से थोड़ा, देखो जो सकल विद्याओं की मूल असंकीर्ण द्रव्य पर्याय और गुण पर्यायों से सुस्थित मैंने अच्छी तरह व्यवस्थित आत्मा के स्वभाव का आश्रय करके यथोक्त आत्म स्वभाव की संभावना में समर्थ वहां आत्म स्वभाव की संभावना में नपुंसक था और इसके बदले में यहां समर्थ है, तो इसका नपुंसक का मतलब हो गया ना असमर्थ, जब ये यहां समर्थ लिखा ना उसके विरोध में तो वहां असमर्थ हो गया ना, है ना। होने से पर्याय मात्र के प्रति बल को दूर करके, अब पर्याय मात्र बस कुछ मुझे कुछ से मतलब नहीं है, पर्याय मात्र में अपनापन नहीं, आत्मा के स्वभाव में स्थिति करते हैं जिन्होंने सहज विकसित अनेकांत दृष्टि से समंत एकांत दृष्टि के परिग्रह के आग्रह को नष्ट कर दिए हैं। अब कौन सा परिग्रह छोड़ना है, ये हमें रुपया पैसा परिग्रह देखता है, ये रुपये पैसे का परिग्रह में नाम ही नहीं है, 24 परिग्रह होते हैं इसमें रुपया पैसा है ही नहीं। मैंने तो कितना लिखा धर्म के 10 लक्षण में, लाखों किताब निकल गई और हर परिसर में सुनते हैं वो अभी भी वही परिग्रह ही बस बने, रुपया पैसा ही परिग्रह, रुपये पैसा ही परिग्रह बना हुआ। और ये यहां क्या कह रहे हैं, एकांत दृष्टि के परिग्रह को नष्ट कर दिया है, अब हमें एकांत दृष्टि का परिग्रह छोड़ना है। अब उसे हम एकांत दृष्टि का कोई परिग्रह होता है, ये हमारे समझ में नहीं आता। बोलो एकांत दृष्टि वाला जो परिग्रह है ना, इसका नाम परिग्रहों में आता है, रुपये पैसे का नहीं आता, तो इसका भी तो नहीं आता, आता है कहाँ आता बता, वो मिथ्यात्व नाम का परिग्रह है ना, तो एकांत दृष्टि मिथ्यात्व है कि नहीं, सबसे बड़ा परिग्रह है कि नहीं, सबसे नंबर एक परिग्रह है कि नहीं। अब हम इसे परिग्रह कहते हैं तो कहते कहां ये कहां है परिग्रह, और हमको रुपये पैसे में परिग्रह दिखता है और इसमें एकांत दृष्टि में हमें परिग्रह नहीं दिखता है कि आग्रह नष्ट कर दिए हैं वे मनुष्यादि गतियों में, उन गतियों के शरीरों में अहंकार ममकार न करके जिस भी गति में वे हों उस गति के शरीरों में अहंकार ममकार न करके, देखो शरीर छूटेंगे नहीं मरते दम तक, तुम तो क्या चीज हो, अरहंत भगवान का भी नहीं छूटता है, ये तो केवल ज्ञानी हो गए और उसे शरीर को परिग्रह मान लिया और उसे छोड़ देना चाहिए ना, तो हम तो चाहते हैं छोड़ देने, छूटता ही नहीं है, हाँ एक आध दिन दो दिन चले ऐसे क्या, अरे लाखों लाखों वर्षों तक, बोलो आदिनाथ का कितने वर्ष तक नहीं छूटा था बताओ, नहीं मालूम है, देखो 84 लाख वर्ष की आयु थी, 83 लाख पूरब में उन्हें दीक्षा ली थी, 1000 वर्ष में केवल ज्ञान हुआ, ठीक है, अब 1000 वर्ष और 83 लाख पूर्व, तो अब 1 लाख पूर्व बचा था उसमें 1000 वर्ष घटा दो बस, फिर वो 1 लाख वर्ष पूरब तक वो नहीं छूटा शरीर, और शरीर को उन्हें अपना मानना छोड़ना छोड़ दिया था, कहना छोड़ दिया था, सब कर दिया था, कोई कमी नहीं रही थी, कितने वर्ष हो गए, 1 लाख पूरब में कितने बरस होते हैं,
हैं जी, तुम तो कारण योग भी पढ़ते हो भैया, तो उसमें इतने हजार इतने हजार फटाफट बोलो ना, देखो इतने हजार इतने करोड़ वर्ष, मैं नहीं जानता हूं, मैंने याद किया आज तक, क्या सुनता रहता हूं वहां से, तुम्हारे उसमें क्लास चलती है ना, उसमें सुनता रहता हूं, इतने हजार इतने करोड़ वर्ष, तो वो शरीर नहीं छूटता है, हमने इसे अपना इतना बेशरम है कि इसे हमने कह दिया तुम हमारे कोई नहीं, ये ढंग से अपने बच्चे से भी कह दो तो दो चार दिन में वो भी छोड़ के भग जाएगा, बाप से कह दो तो बाप भी भग जाएगा, पत्नी से कह दो तो पत्नी भग जाएगी, समझ दी, कितने दिन रुकेगा बोलो, नहीं रुकेगा, जाना पड़ेगा। तो ये शरीर कैसा है कि अब उनमें तो कोई शंका नहीं कर सकते कि ऋषभ देव अपने शरीर को अपना मानते होंगे, उनका मनुष्य मनुष्य व्यवहार चलता होगा, नहीं इतनी उपेक्षा कुछ नहीं, जैसे है ही नहीं, अब वो नहीं बनाए बनाए जाओ, जाएंगे जब हमें जाना है जाएंगे, तुम्हारे हिसाब से नहीं जाएंगे, हम अपने हिसाब से जाएंगे, क्यों देखो अहंकार ममकार ना करके। अब उदाहरण देते हैं, अनेक कमरों में संचारित रत्न दीपक की भांति, अनेक कमरों में संचारित, ये रत्न दीपक हाथ में लिया और फिर हम इस कमरे में गए, फिर उस कमरे में गए, फिर इस कमरे में गए, क्या कहना चाहते हैं अनेक कमरों में संचारित रत्न दीपक, कि जहां जिस जिस कमरे में गए रत्न दीपक को लेके, तो दीपक अपना किरणें अपना उजेला उसमें लेके गया, गया ना, और जब उस कमरे से दूसरे कमरे में गए तो वो सारा अपना उजेला लेके दूसरे में गया कि नहीं गया, वो पहले कमरे में कोई उजेला रहा नहीं रहा। तो ऐसे ही जो हमारा भगवान आत्मा अपने अनंत गुण लेकर अपना अनंत प्रकाश लेकर हर इस शरीर में गया, उस शरीर में गया, उस शरीर में गया, उस शरीर में, जैसे वो रत्न दीपक घूमता रहता है, घूमता रहा, लेकिन उससे हमारा क्या, उस कमरों से हमारा क्या लेना देना हो गया कि हम एक दिन इस कमरे में रहे थे। एक एक, एक कहानी मैंने पढ़ी थी, बहुत मार्मिक थी, टाइम हो गया मुझे मालूम है, लेकिन सुनो लंबी नहीं, मैं तो दो मिनट में सुनाता हूं। कि एक राजा साहब रात्रि में किसी शिकार मकार के लिए गए थे तो वहां भूल गए, तो जंगल में भूल गए, अब रात हो गई, बहुत अंधेरा हो गया, अब कहां जाएं रास्ता का भूल गए, पता नहीं चले, तो वहां एक झोपड़ी थी, एक झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती थी, तो उस बुढ़िया से कहा कि हमको यहां रुकना है, तो उन्होंने कहा ठीक है आओ रुको, और सब बताया उसने, तो उसने खाना बनाया, उसने मैं खाना खिलाया, जो भी उसकी हैसियत थी उससे उसने पूरा आतिथ्य उन्हें किया, उनका ख्याल नहीं ना, जब सुबह हो गया तो वे निकल के चले गए, हो गया काम खत्म। अब वहां से गवर्नमेंट के आदमी आ गए दूसरे तीसरे दिन, क्या महाराज राजा साहब यहां किसी बुढ़िया के यहां ठहरे थे, तो देखा गया क्या के? उसने बड़ी खुशी खुशी कहा कि हाँ मेरे यहां ठहरे थे, मैंने खाना खिलाया, मैंने सब ये किया, क्या तो यहां एक दिन का झोंपड़ा बनेगा, मतलब समझेंगे ना, यहां बहुत बढ़िया एक बिल्डिंग बनेगी जिसमें लिखा ये रहेगा कि राजा साहब एक दिन यहां ठहरे थे, उसके घर छीन लिया और दे दिए जंगल में, इतना जंगल तो पड़ा है, सब राजा ही साहब का है ना, चाहे जहां बना ले, क्यों, और बन के बहुत बढ़िया ताजमहल जैसा कुछ बन गया, और उसमें लिखा था यहां राजा साहब ने एक दिन विश्राम किया, वो बुढ़ी का कुछ उल्लेख नहीं किया कि उसने उसे खिलाया था पिलाया था, भूखे प्यासे राजा को सुरक्षा प्रदान की थी, क्या नहीं, उसका कहीं कोई उल्लेख नहीं, राजा साहब का उल्लेख ऐसा है क्या, राजा साहब घूम घूम के आगे ना कहीं कोई उल्लेख नहीं, एक एक उस पर मर रहे हो, देखो उन्हें कहा पड़ रहे, समस्त जिसने समस्त क्रियाकलाप से भेंट की जाती है ऐसे मनुष्य व्यवहार का आश्रय नहीं करते हुए,
समस्त क्रियाकलाप से भेंट गया। अब समस्त क्रियाकलाप का अर्थ आप अपने आप समझ लेना, अपने सुबह से शाम तक लेकर समझ लेना, समझना हर एक अपना अपना समझ लेना जो जो करता है। राग द्वेष का उन्मेष रुक जाने से परम उदासीनता का अवलंबन लेते हुए समस्त परद्रव्यों की संगति दूर कर देने मात्र से स्वद्रव्य के साथ ही संगतता होने से वास्तव में वे स्वसमय होते हैं, अर्थात स्वसमय रूप परिणमित होते हैं। इसलिए स्वसमय ही आत्म तत्व है। पर आधे में परसमय की व्याख्या, आधे में स्वसमय की व्याख्या। अब अत्यंत संक्षेप में एक लाइन में कहता हूं, सुनो। देह में एकत्व बुद्धि, इसका नाम परसमय। अपने भगवान आत्मा में एकत्व बुद्धि, इसका नाम स्वसमय। ये व्याख्या इसमें बताई है। अब और डिटेल चर्चा अपन कल करेंगे।